राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 अप्रैल 1993 को सायं लगभग 4 बजे देहरादून में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद परमात्मा को और संत महात्मा को सागर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहता हूं। मेरी बातों में सार बातें दी है, अच्छी बढ़िया उत्तम पार नहीं। वे शास्त्रों की है, पुराणों की है, वेदों की है, संत महात्माओं की है, और बीच में त्रुटियां आ जाए मेरी व्यक्तियों है तो त्रुटियों की तरफ ध्यान न दे कर दे सज्जन लोग सार पर भी ध्यान देते हैं। ये आपकी आशा करता हूं। मानव शरीर की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है रामायण में। गरु जी ने 7 प्रश्न किए हैं उत्तरकांड में। उनमें पहला प्रश्न है कि शरीर कौन सा दुर्लभ है, तो इसके उत्तर में भुसुंडी कहते हैं सबसे दुर्लभ मानुष देही। ये मनुष्य ही दुर्लभ है, और मनुष्य ही में पुरुष हो चाहे स्त्री हो ये मनुष्य ही है बड़ा दुर्लभ है। जीव चराचर जाचर से ही चराचर सब जीव इसकी याचना करते हैं। कारण क्या है, काव्य नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेनी, नरक स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति इसकी निषेनी है, और ज्ञान विराग भक्ति से उदयनी, और ज्ञान विराग भगवान की श्रेष्ठ भक्ति इससे उत्पन्न होती है। जिससे लाभ अधिक होता है उसी की महिमा होती है, तो इससे बड़ा भारी लाभ होता है। तो मानव शरीर का समय है ये बहुत कीमती है। इसमें एक बात मैं कहता हूं, भाई बहनों सब ध्यान दें, मानव शरीर का जो समय है, अपना जो जीवन है, अपनी जो उम्र है, जो जीने के हमारे श्वास है, ये बहुत कीमती है। मनुष्यों ने रुपये पैसे सोना चांदी आदि जमीन जायदाद धन को तो आदर दिया है, परंतु मनुष्य शरीर के समय को आदर नहीं दिया। मनुष्य शरीर का समय दिया जाए तो मूर्ख से विद्वान हो जाता है, पढ़ाई में समय लगा विद्वान बन जाता है, और समय पाकर निर्धन आदमी धनवान हो जाता है, समय पाकर साधारण आदमी की भी बड़ी भारी प्रशंसा हो जाती है। समय देने से वकील वैसे आदमी बड़े ऊंचे पद प्राप्त हो जाते हैं, समय देकर के एक आदमी 20-50 परिवार वाला हो जाता है। समय देने से सब कुछ मिलता है, स्वर्ग मिलता है, मुक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है, उत्तम से उत्तम वस्तु मिल जाती है। और इसका अगर दुरुपयोग किया जाए 84 लाख जोड़ी और नर्क मिल जाती। तो महिमा में ये बात कही कि नर्क मिल जाता है, तो इनका सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। इसका उपयोग ठीक तरह से किया जाए, शास्त्र के मत के अनुसार किया जाए, तो बड़ी भारी उन्नति होती है। गीता में तो यहां तक कह दिया है कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिगमत। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ हो सकता है ऐसा मनुष्य मांग ही नहीं सकता। आखिरी लाभ तत्व की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, जीवन मुक्ति प्राप्ति, विजय देव की प्राप्ति, ये अलग अलग नाम है उसके। वो ऐसा एक परम पद है, उससे बढ़कर तो कोई नहीं सोचा, कोई समान भी कोई नहीं है। तो ऐसे पद की प्राप्ति हो सकती है मनुष्य शरीर के समय को लगाने से। उस समय को सिनेमा देख लिया, ताश खेल ली, चौपड़ खेल ली, आरसी जिंदगी कर ली, इधर उधर गप सब कर ली, समय बर्बाद कर दिया। ये बड़ा भारी नुकसान है। सा हानि तद्वत छिद्रम सांत मूढ़ता यद मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंती। वो बड़ी भारी हानि है, वो बड़ी भारी गलती है, वो अंधता है, बड़ी मूर्ता है, मूर्खता है, बेसमझी है। जिस क्षण में मूर्त में भगवान का चिंतन न हो, प्रभु का चिंतन न हो, बड़ी भारी हानि है। तो प्रभु का चिंतन करना, भगवान को याद करना, ये काम है। दूसरा काम है सेवा करना। ये मनुष्य शरीर है, ये आपने सुना है ना, ये मध्य लोक है। मध्य स्वर्ग, मध्य और पाताल तीन लोग है। इनमें 14 भुवन है, भूलोक, वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ऊपर अतल, वितल, सुतल, सातल, सहसातल, महातल, पाताल, महातल। ये 14 भुवन होते हैं, वो तीन भवन में कहते हैं। एक ऊपर के लोक है, एक नीचे का लोक है, एक मध्य का लोक है। तो मनुष्य शरीर मध्य के लोक में है, तो इसके द्वारा देवताओं को भी तृप्ति होती है और पाताल लोक के असुरादि की तृप्ति होती है और मनुष्य की तृप्ति होती है। पशु, पक्षी, पौधे, कुत्ते, गधे आदि वीर जोनी सबका पालन मनुष्य शरीर से होता है। तो सबकी सेवा करना मनुष्य का काम है। प्रभु को याद करना और सेवा करना, ये दो खास काम है। ये मनुष्य कर सकता है, और की ताकत नहीं है। जहां आप रहे वहां ही रहे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबके सुविधा कैसे हो। घर में रहते हुए ही आप ये ध्यान रखें, भाई लोग भी और बहनों माताएं भी, कि सबकी सेवा कैसे बढ़ जाए, सबको सुख कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, किसी को दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही सदा मंगल ही मंगल होता रहे, कभी किसी को दुख न हो, ऐसे भाव से संसार में रहना है। अपने स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग करना है। बिना अभिमान स्वार्थ के त्याग के सेवा नहीं होती। स्वार्थ को त्याग बिने वस्तुओं की द्वारा लोगों की सेवा नहीं होती, और अभिमान रखने से शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। शरीर से तो शरीर से खट करके दूसरों की सेवा करना और वस्तुओं के द्वारा दान करके दूसरों की सहायता करके उन्हें अर्पण करके सेवा करना, ये मनुष्य का धर्म है, ये मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य के कहने लायक काम करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बढ़िया औजार हो जिसमें आंख का ऑपरेशन किया जाए, ऐसे बढ़िया औजार से सूखा काट चीरा जाए तो लोग क्या करता है, ये काट में टूट जाएगा, काटीरा भी जल जाएगा। ऐसे मानव शरीर असली नेत्रों का इलाज करने के लिए है, उसका ऑपरेशन करने के लिए है। जो मोतियाबिंद हुआ हुआ है, मनुष्य को पता नहीं किसमें सार है किसमें असार है, किसमें लाभ है किसमें हानि है, इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है, ग्यारह नहीं है ना पशु के समान, ज्ञान से रहे थे पशु के समान है। तो विवेक ज्ञान भगवान ने दिया है, सार असार नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य उन्नति अवनति लाभ हानि, ये दोनों का ज्ञान अपने को है। तो हानि की तरफ नहीं जाना है, अलाभ की तरफ नहीं जाना है, लाभ और उन्नति की तरफ हमें जाना है, ऐसे विवेक पूर्वक चले। तो विवेक पूर्वक चलने नहीं तो भगवान को याद करना और एक संपूर्ण जीव मात्र की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना हित करना। गीता ने कहा ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कर्मशा सुनक देवधारितात्मान सर्वभूत हिते रता, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति मन निर्गुण की प्राप्ति भी संपूर्ण का हित करने से होगी, और मामेव प्राप्त होती भगवान सगुण की साकार की प्राप्ति भी सर्वभूत ही सबका हित करने से होता है। पर हित सरिष धर्म नहीं भारी, सबका हित करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, आदर करना, प्रशंसा करना, किसी तरह से सबकी उन्नति करना, ऐसे हित करने के समान कोई धर्म नहीं। पर पीड़ा सब नहीं दूसरे पीड़ा अधमता नहीं है, पर हित बस जिनके मन में ही, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है, दूसरे का कल्याण निवास करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। तिनका जुग जग दुर्लभ कसुना है, दूसरे के हित में जिसका मन लग रहा है सबका हित हो सबका कल्याण हो, तो उसको कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान और संत ये दो बिना कान हित करने वाले हैं। संत ना और साधु का ही नहीं है, संत भाव होता है। गृहस्थ भी संत होते हैं, साधु भी संत होते हैं, हमारी बहनों माताएं भी संत हुई है, जैसे मीरा भाई है, कर्मा भाई है, कर्मेती भाई है, फूली भाई है, ऐसी कई कई भगवान की भक्त हो गई है, वे बड़ी आदरणीय पूजनीय माताएं हुई है, वे संत थी। तो संत का क्या मानना है कि संत भला करता है। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, उसके साथ बुराई करता है तो भी संत भलाई करते हैं। जैसे ऊख होता है ईख कहते हैं, इसको कोलमा डाल कर पेरा जाए तो उससे मिठाई भी निकलता है, ऐसे संत को कष्ट देने पर भी उसके द्वारा हित होता है। ये स्वभाव है, स्वार्थ निमित्त सकल जगमाए, संपूर्ण संसार में स्वार्थ के मित्र है। सुपने प्रभु परमार्थ नाही, परमार्थ के सपने के नहीं है। तो स्वार्थ सूर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाल करें पीती अपने मगर से प्रेम करते परंतु हेतु रहित दुख दुख उपकारी बिना स्वार्थ करने वाले कोई अपने स्वार्थ मतलब न रख करके हित करने वाले तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान और एक भगवान के भक्त ये सदा ही दूसरों का हित करते ही रहते हैं। जैसे इंद्र तुम्हारी कहा है चंद्रमा से पोषण ही होता है सूर्य से प्रकाश ही होता है इससे अहित नहीं होता है पर दूसरों का हित होता है। इसी तरह से संत महात्माओं के द्वारा और भगवान के द्वारा सबका हित होता है। तो हित करना है ये मनुष्यता है, अहित करना है अपने स्वार्थ के लिए वो राक्षसपना है। वे असुर है जो अपने प्राण पोषण के परायण रहकर दूसरों को दुख देते हैं, वे खा जाते हैं, कष्ट देते हैं, दूसरे को ठग लेते हैं, बुराई करते हैं, अपना मतलब भी असुर कहलाते हैं और मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जानवरों को मारकर खा जाते हैं, मांस सेवन करते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, ऐसे वे राक्षस है। मनुष्य रूप है, मनुष्य रूप तो मनुष्य का है परंतु वे राक्षस है। रावण ब्राह्मण था, विश्वा का बेटा था, पुलिस का पोता था, ब्राह्मण कुल में था परंतु आचरण से वो राक्षस हुआ। ऐसे मनुष्य जीवन में जो मदिरा मांस अंडा मछली आदि बुरी बुरी चीजों का सेवन करते हैं, जीवों को मार करके मरे हुए जीवों को खा जाते हैं, मुर्गियों को भी, जो कुत्ते सियार आदि खाते हैं इसलिए से खा जाते हैं, वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, बहुत नीची कोटि के हो गए। किसी को भी कष्ट देना है वो असुर बना है, राक्षस बना है, नीचे जो नहीं है तो किसी को भी दुख न हो, कम से कम दुख न पहुंचावे। सेवा करे बड़ी अच्छी बात है तो सेवा न हो तो दुख न पहुंचावे। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कभी किसी की बुराई न करे, हो सके तो भलाई करे नहीं तो बुराई न करे, नुकसान न पहुंचावे किसी को ही, किसी को बुरा न समझे। मन से भी वो आदमी बड़ा बुरा है ऐसा न माने, ऐसा मानने से वो तो बुरा है कि नहीं है अपने अंतकरण में बुराई आ जाती है और बुराई करे नहीं कहे भी नहीं वो बुरा है, निंदा नहीं करना, बहनों माताओं से कहना है, सज्जनों से कहना है, कोई बुरा भी हो तो चुप कबीरा बोले मत, परला किसी का खोले मत, परले परले अंतर है कई हीरा कई पत्थर है, किसी का भी पर्दा नहीं खोलना है, अपने उससे बचो, बुरों से अपने को बचाओ, कहीं कहने का भी काम पड़े तो अपनी धारणा कह दी वो बुरा ही है इसका पता नहीं है, हमने तो ऐसा देखा है चोरी करता है, व्यभिचार करता है, डाका डालता है, ठगाई करता है, राज में फंसा देता है, ऐसा करता है तो वही ठीक नहीं दिखता हमें, कोई ज्यादा पूछे तो कह दिया, नहीं तो बुराई न करना और बुराई देखना भी नहीं, बुरा देखता है उसका बुरा हो जाता है, बुराई का चिंतन करता है तो बुरा हो जाता है, बुराई कहता है तो बुराई बुरा हो जाता है। तू बुराई को जितना हम सेवन करेंगे उतना बुरा हो जाएगा, ऐसे भगवान का चिंतन करेगा, दूसरों का भला सोचेगा, सबका उपकार करेगा, दया रखेगा, हित करेगा तो उसका हित स्वतः ही होगा और संसार भी उसको चाहेंगे, सब संसार चाहता है, हित करने वाला कौन नहीं चाहता। व्यवहार में हम देखते हैं तो माँ अच्छी लगती है, माता का हम आगे करते हैं, माँ ना प्यारा लगता है, कारण के वो जन्म देती है, पालन करती है, अपने शरीर का दूध देकर के पालन करती है, हित करने वाले होने से माता अच्छी लगती है। माँ का दर्जा भी बड़ा ऊंचा बताया गया है, पिता से 100 गुना अधिक, 10 गुना कहीं 100 गुना अधिक बताया है, ऐसे माता का दर्जा है। तो क्यों है कि माँ हित करती है, पालन करती है, रक्षा करती है, उसी हृदय में दया होती है। तो मातृवर्ग में दया शादी होती है, पुरुष वर्ग वर्ग की अपेक्षा पुरुषों में थोड़ी कठोरता होती है। इस वास्ते बाहर का काम करने के लिए पुरुषों को कहा गया, नौकरी करो, धंधा करो, बाहर का काम करो, और घर का काम करने के लिए बहनों माताओं को कहा गया। घर में अपने ठीक है तो घर की महारानी है, वो घर की मालकिन है, उसके किया हुआ होता है। बाहर से चाहे ससुर हो, जेठ हो, पति हो, पुत्र हो, बाहर काम करके आते हैं तो घर में रहने वाली माँ भी, बहन भी, साथी और ताई भी आदर करती है, उनको जल ताली बना है, चल धो दो, भोजन करो, गर्मी है तो पंखा करती है, माँ सेवा करती है। इनमें सेवा की वृत्ति अच्छी है, अभी है, इसलिए भाइयों को भी चाहिए सेवा करे। बाजार में कोई आदमी बैठा है, कोई भिखारी भूखा है, तो आदमी भाई 5, 10, 15, 20 निकल जाए मन में नहीं आएगी, ये माए जाएगी, पूछेगी क्यों बाबा जी भूखे हो, कुछ खाओगे, ये देती पानी करती है, ये मातृशक्ति है। छोटी छोटी बच्ची भी वो मातृशक्ति है, वो माँ बनने वाली है। छोटे लड़का लड़की में भी हमने देखा है, छोटे भाई बहन को गोद में रखती है लड़कियाँ, तो उसको कोई मीठा मिल जाए तो जेब में रखती है, अपने छोटे भाई बहन को देती है, लड़कों को दिया जाए वो खा जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि छोटे भाई को, हमारी छोटी बहन को मीठा देंगे, ऐसे उनकी वृत्ति नहीं है। पुरुष वर्ग में कम है, ऐसी पुरुषों में भी है परंतु बहनों माताओं में ज्यादा है। भगवान ने कृपा करके इनको हृदय दिया है, कारण के बालकों का पालन करना है ना। ये बहन और भाई सभी पहले माँ की गोदी मारते हैं, माँ के द्वारा ही पालित होते हैं, तब हम बाहर आते हैं। तो पहला गुरु माँ माना गया है, इस वास्ते आपकी भाषा मातृभाषा क्या है, माँ से तुमने क्या सीखा है, तो खाना पीना चलना फिरना सब माँ सिखाती है, माँ पहला गुरु है। जिनकी माताएं अच्छी हुई है उनके पुत्र बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। प्राय ये नियम है, पक्का नियम तो नहीं कहते, परंतु प्राय का ये है जिनकी माताएं उदार श्रेष्ठ हुई है, उनके लड़के बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, और जो वीर माताएं हुई है उनके पुत्र बड़े शूरवीर हुए हैं, बड़े धर्मात्मा हुए हैं। कुंती माता के युधिष्ठिर माता जन्म लेते हैं, भीमसेन जन्म लेते हैं, अर्जुन जन्म लेते हैं, मालवीय के नकुल सहदेव जन्म लेते हैं। तो माताएं अच्छी होने से उनके पुत्र बड़े वीर होते हैं, बड़े भगवत होते, भक्त होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उपकार करने वाले होते हैं, दया कर रखते हैं, सबका हित करने वाले होते हैं। तो माताएं अच्छी होनी चाहिए। आजकल कुछ लड़कियों में उद्यमता उच्छृंखलता आ गई है, वो ससुराल जाती है तो सास की सेवा नहीं करती, जेठानी की सेवा नहीं करती, तो ये उद्यमता धीरे धीरे स्त्रियों में आने लगी है। नहीं तो लड़कियों में स्वाभाविक सरलता, नम्रता, सेवा भाव अधिक रहता। तो अब भी बच्चियों को चाहिए ऐसी बातें सीखे। एक बड़े दुख की बात आ गई, याद आ गई, आज परिवार नियोजन चला है, महान हत्या की बात है, बड़े भारी पाप की बात है, गर्भ गिराने की बात है, ब्रह्म हत्या की बात है। मैं तो जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, भाई जिस घर में गर्भपात कराया गया हो, ऐसे गर्भ गिराया, उस घर का अलग घर हमारे को मत देना। मैं भिक्षा पाया करता हूँ, कई घरों से मिल जाए वो मैं रोटी लेता हूँ, तो वो जिन घरों में गर्भपात हुआ है उस घर की भिक्षा मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, महान हत्या है बड़ी भारी। जिसमें भी गर्भ की परीक्षा करेगी लड़की है तो उसका गर्भ गिरा लेते हैं, लड़की मातृ शक्ति है, वंश बढ़ाने वाली शक्ति है, ये माँ होने वाली है, तो माँ की हत्या करना बड़ी भारी पाप की बात है, वो मातृ शक्ति है। तो लड़कियों का ऐसे गर्भ गिरा कर बैठा बहुत हत्या की है। बहनों माताओं भाइयों याद रखो, गर्भ मत गिराओ, नसबंदी मत कराओ, ऑपरेशन मत कराओ, संतति निरोध मत करो। अभी संतति निरोध के कारण से अंदर ऐसी बात सुनी है कि 40 करोड़ हिंदुओं की कमी आ गई है और मुसलमान बहुत बढ़ गए हैं। हमारे मुसलमानों के साथ बैर नहीं है, परंतु वे अहित करते हैं, उनकी जाति स्वभाव ऐसा है। अयोध्या के मंदिर को लेकर सरकार कहते हैं इसमें प्रमाण क्या है कि मुसलमानों ने ये मंदिर तोड़ा है, प्रमाण प्रत्यक्ष है। अभी 200 मंदिर के तोड़ दिए मुसलमानों ने, तो इस जाति में तोड़ने की रिवाज है, ये तोड़ते हैं, प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, मंदिर तोड़ रहे हैं। अभी हम कलकत्ता में थे तो वहां थोड़ा आपस में दंगा हुआ, जिसमें 3 मंदिर तोड़ दिए, चौथे मंदिर तोड़ने के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्ष उनकी जाति में प्रत्यक्ष अभी देख लो, और पहले मथुरा में मंदिर तोड़ा भगवान कृष्ण के जन्म स्थान में, अयोध्या के जन्म स्थान में राम जी का मंदिर तोड़ा, काशी जी में शिवालय वो शिव जी का मंदिर तोड़ा। अब विचार करो उनके क्या बिगाड़ किया आपका। मेघ मच्छी सज्जन पुरुष रग जल तृण संतोष व्याघ्र धीवर कृष्ण जल करे आकार रोष। मृग होता है बेचारा, वो घास खाता है, पत्ती खाता है, जीवन निर्वाह करता है, उसको जो भेड़िया होता है वो मृग को मार देता है, थोड़ी होता है मार देता है। ऐसे मच्छी बेचारी जल में रहती है, अपनी घूमती है, किसी का बुरा नहीं करती, पर जीवन होता है और मत्स्यों को पकड़ मार लेता है। ऐसे सज्जन पुरुष है, संत है, अपना भजन स्मरण करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ देना, संतों को विघ्न डाल देना, मार देना, ये राक्षसों का काम है। वनवास में जब राम जी गए तो ऋषियों ने ढेर दिखाई हड्डियों के ब्राह्मणों को मार मार कर तपस्वियों को खा गए। ऐसा काम ये क्रूर करते हैं, ऐसे क्रूर कर्म करने वाले हैं, उनका अहित नहीं करना है। जैसे राम जी ने कहा जब लंका में पहुंचे हैं तो अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा, तो उसको ये कहा कि काज हमार तासु हित होई, काम तो हमारा बने, सीता को ले गया है वो अपने लेना है, वो काम तो हमारा हो, पर तासु हित होई, रावण का जैसे हित हो विपुण करो पता के सोई, उसी साथ ऐसी बात करना, इस तरह का विचार करना, कितनी विलक्षण बात है, कैसी अनोखी बात है। रावण ले जाता सीता जी को, परंतु राम जी वशिष्ठ भेजते हैं, तो कहते भी तासु हित हो ही, उसका हित हो। अरे अनुभव की मन रामो, राम जी ने बैरी अभी अनुभव नहीं किया, भलाई भला किया, रावण बुराई बुरा करता है। ऐसे जातिगत ऐसे बहुत से धर्म होते हैं, बड़े अच्छे आदमी मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, और बुरे आदमी हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। साधुओं में बुरे है, कालदेव जी में रावण राहु कालदेव ही होगा, रावण भी साधु का वेश धारण किया, तो साधु वेश में भी ऐसे होते हैं। और अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए तुलसीदासी महाराज जैसे, ऐसे बहनों माताओं में बड़ी बड़ी भक्त हो गई, और सूर्पणखा जैसी जैसी राक्षसी हो गई, तारका जैसी राक्षसों की हो गई। तो सब समुदाय में सब तरह के मनुष्य होते हैं, फिर भी ऐसा समुदाय जिसमें अच्छे पुरुष ज्यादा होते हैं। अभी अयोध्या के मंदिर के लिए मतगणना की गई, मानो हस्ताक्षर कराए गए, तो हजारों ही मुसलमानों ने लिखा है, उससे बहुत नुकसान हुआ। साथ में रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक देश में रहने वाले थे, उनमें महान बैर पैदा कर दिया है, विरोध पैदा कर दिया है, बहुत दंगे हुए हैं। अभी बंबई में बहुत मनुष्य मरे हैं, उनमें मंदिर की बात ही नहीं है, अयोध्या के मंदिर की बात नहीं, बैर हो गए, हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदुओं को मारे, मुसलमान हिंदुओं की संपत्ति नष्ट करे, हिंदू मुसलमानों की संपत्ति नष्ट करे, दोनों मिल करके भारत का नाश कर रहे हैं, राज्य का नाश हो रहा है, देश का नाश हो रहा है। ये विरोध करने से ठीक नहीं है, ये पक्षपात करने के कारण से बहुत नुकसान हुआ है। अगर सरकार कृपा करके हिंदुओं की चीज हिंदुओं को दे दे, मुसलमानों को समझावे भाई ये काशी मथुरा अयोध्या हिंदुओं का है तो इनको दे दो, कई मुसलमान देने को तैयार है, पसंद भाई उद्यम आदमी सब में होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों भी होते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। ये असुर और राक्षस की तरह होते हैं, हिंदू कहते हैं तो अपनी चीज के लिए कहते हैं, मुसलमान कहते हैं वो अभिचार करो थोड़ा सा कि मुसलमानों ने अपने राज्य में हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं का नाश किया, हिंदुओं के बहन बेटियों को उठाकर ले गए, जबरदस्तियों को ले गए। हिंदू राज्य में कभी आपने सुना कि मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों की स्त्रियों को ले गए, उनकी कन्याओं को ले गए? कभी नहीं किया ऐसा अन्याय। ऐसा अन्याय किया, वे अन्याय की ध्वजा है अयोध्या में, मथुरा में और काशी जी में, उनका अन्याय पूर्ण ध्वजा एक स्मारक जैसे कोई स्तूप बनाता है, भाई हमारे स्मृति है, स्मरण रहे, ऐसा स्मरण स्तूप बनाते हैं, ऐसे अपयश का स्तूप है ये, कि मुसलमानों का कैसी 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 दुष्टता है, तो मंदिरों का नाश किया, अब उसको नाश करते हैं तो मुसलमान कहते हैं कि नहीं ये तो रहना चाहिए, हमारा अपयश त्रिलोकी में अपयश है, हमारा नुकसान है, ये रहना चाहिए। तो अपदश क्यों रुको भाई, अपदश मिट जाए अच्छी बात, कलंक है, पर ये बात समझ में नहीं आती। मैंने बात करी कि ये तो मुसलमानों का कलंक है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, तो त्रिलोकी में सब जगह प्रसिद्ध है कि हिंदुओं का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, तो उसका अपदश है। मैंने कहा कि इस दिन बोले कि इस पर दृष्टि नहीं जाती, लोग ख्याल ही नहीं करते कि तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम्हारा अपदस हो रहा है, तुम्हारी नीची हेठी हो रही है, पर कोई समझते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, हमारी बात रहने से हमने अन्याय कर दिया, वो अन्याय हमारा कायम रहना चाहिए, और सरकार भी कहते हैं अन्याय कायम रहना चाहिए, न्याय अन्याय तो निरंतर रहना ही चाहिए, इस पक्ष में कर रहे हैं, क्या करे, किस क्या करी लोगों ने, प्रजा तो राजा से जाकर रोती है, राजा ही अन्याय करे, अब न्याय कौन करेगा, तो ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है। सज्जनों अपने अन्याय मत करो, शास्त्र में आया है कि आपने बहन बेटी को कोई तंग करे, आपका धन हड़प करे, आपकी जायदाद ले जाए, आपके आग ले जाए, ऐसे आगता ही होता है, उनको आते हुए मार दो, पाप नहीं लगता। और ऐसे अराजकता में राजा ही जब सहायता नहीं करता, उस समय मनुष्यों का खातर धर्म होता है, मानो अपने आप रक्षा करो, अपने इज्जत की, अपनी बेटी बहन बेटी की, अपने धन की, अपने शरीर की और अपने जायदाद और जमीन की रक्षा स्वयं करो, ऐसा शास्त्र वर्णन आता है। तो भाई अपने किसी का बुरा नहीं करना है, परंतु बुरा सहना भी नहीं चाहिए, बुरा सहने से भी बुराई बढ़ती है। तो आप लोगों से एक प्रार्थना है, आप एकता करो, अगर हिंदू सब एक हो जाए तो आपका अहित कोई कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, परंतु आप एक नहीं होते। उन्हीं को हत्या को करने वालों को, मंदिर तोड़ने वालों को, गो भक्षण करने वालों को वोट देते हुए अब क्या करें। आप अपने घर में ही नहीं सोचते, विचार नहीं करते। अब थोड़े सी इन्होंने खूब अच्छी तरह से मारा है, बिना कारण मंदिर छोड़े हैं, बिना कारण हिंदुओं को मारा है। इससे कुछ थोड़ी जागृति आई, हिंदुओं में थोड़ी सी जागृति आई है। और ये और संस्था ने कहते ये अयोध्या का प्रसाद आया है, अयोध्या की गुलाल आई है, अयोध्या का दीपक आया है, ऐसे अयोध्या के जो फरमान आते हैं ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये आया है कि ध्वजा लगाओ अपने अपने घरों में, भगवान राम जी की ध्वजा लगाओ, लाल ध्वजा हनुमान जी की ध्वजा लगाओ, दुकानों में भगवान के चित्र रखो, अपने घरों में भगवान के चित्र रखो, हिंदुओं की पहचान तो हो। मुसलमान अपना वो वैसी ताजिया बढ़ा करके और भी मदारा बना करके अपनी अपनी मकानों में रखते हैं, ऐसे हिंदुओं को भी अपने अपने मकानों में भगवान का इष्ट रखो, भगवान का चित्र रखो, भगवान का पूजन करो, घर में मूर्ति रखो, पूजन करो, बाल बच्चों से कहो बेटा नमस्कार करो, ये चरणामृत लो, ये तुलसी लो, तो आपकी शांति होगी, शुद्धि होगी। वे तो अपने जाति के लिए करते हैं, अपना धर्म है वो धर्म के लिए, कल्याण के लिए करना है। ईसाई अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, अपना मकान और अपने गिरजाघर बढ़ा बढ़ा कर जगह जगह पूजन करवाते हैं, ईसाई धर्म को बढ़ा रहे हैं। वो बढ़ा रहे हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा राज्य हो गया, वोट का जमाना है। परंतु हमारे धर्म का तुलसी दल का सेवन करो, शरणामृत का सेवन करो, भगवान का पूजन करो, ऐसे मंदिरों में जाओ, प्रणाम करो, नमस्कार करो, परिक्रमा करो, ऐसे पूजन करो, पुष्प चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, जिससे अंतकरण शुद्ध होगा। ये ऐसे नहीं है कि हमारी संख्या बढ़ जाए, हमारी परमात्मा की प्राप्ति हो, कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसे उद्देश्य से ये हिंदू धर्म है, ये वैदिक धर्म है। इसका पालन करो और इसका प्रचार करो, अपने घर घर में ऐसा प्रचार करो कि जिससे भगवान की आस्तिकता बढ़े। मैंने यहाँ देहरादून में देखा है कि अयोध्या चलो लिखा हुआ मैंने पढ़ा, यहाँ भी लोगों में जागृति आई है, लिखा हुआ देखा, बीजों पर लिखा हुआ है चलो अयोध्या चलो, ऐसे लोगों आप लोगों ने किया है, अयोध्या आप लोग गए हैं, बड़ी अच्छी आनंद की बात है। ऐसे जागृति आप लाओ, हम अहित नहीं करते, दूसरों का नुकसान नहीं करते, परंतु अपनी चीज तो अपने लेनी चाहिए भाई, अन्याय पूरी क्यों तो हरे थे। राज प्रार्थना करो महाराज, इतना पक्षपात मत करो, मुसलमानों के लिए बहुत छूट दे दी, अल्पसंख्यक है इस बात छूट दे, ऐसा करके और करता है वोट के लिए, अपने स्वार्थ स्वार्थ में जब फंस जाते हैं तो भाई राजा प्रजा सब नष्ट हो जाते हैं। साधुओं में स्वार्थ भाव आ जाने से साधुओं में बुराई आ गई और साधु भी अच्छे मिलने मुश्किल हो गए, कारण ये स्वार्थ भाव आ गया। ऐसे हमारी बहनों में भी, अभी लड़कियों में स्वार्थ और आराम भाव आ गया, सास की सेवा नहीं करती, जठाने की सेवा नहीं करती, बड़ी नंद की सेवा नहीं करती, काम धंधा घर का नहीं करती, अलग हो जाती है। घरों में ऐसी बातें हमने देखी है और सुनी है, सास ससुर बूढ़े हो गए तो उनको ये जाते बेटा है, अपनी बहुओं को लेकर अलग हो गए, कितनी स्वार्थता हो गई है। कर्जू की महिमा महाराज, इस वास्ते ऐसे जमाने में जो घर में सेवा करते हैं उनकी बड़ी महिमा है। सास ससुर की सेवा करो, कुटुंब का पालन करो, समान अवस्था वालों का आदर करो, प्रेम रखो, प्रेम रखने से आपका घर तैकुट हो जाए, स्वर्ग हो जाए, और बैर रखने से कलह का घर हो जाएगा, नरक हो जाएगा घर, उसमें रात दिन राग द्वेष हर्ष शोक कलह लड़ाई दंगा हो रहा है, तो घर अशांति का घर हो गया। इस वास्ते बहनों भाइयों, अच्छा काम करो, भगवान को याद रखो और सेवा करो, सुख पहुंचाओ, पहले घर में से शुरू करो, माता पिता की सेवा करो। बहनों को चाहिए कि अपने सास ससुर की सेवा करो, वो कुटुंब का पालन करो, तो कितना अच्छा काम हो, आपकी भी बड़ाई होगी जो सेवा करोगी तो, और शांति मिलेगी। और इस यात्रा नहीं करोगी तो दुनिया के साथ में आप कहोगे, बात करोगे, दुनिया कहेगी कुत्ता घरे जो करते है, कुत्तिया की तरह लड़ाई करती है। चूरू में भगत नाथ जी महाराज एक संत थे, उनकी सेवा में समझाते थे। ये जयदयाल जी गोविंद का जिन्होंने गीता प्रेस स्थापन किया है, शुरू किया है, रक्षा की है और इनको ठीक तरह से जमाया है, ये जयदयाल जी ये बात करते हैं। मैं बचपन में वहाँ जाया करता था तो रतनगिर में थे, उनका मनिहाल है वहाँ, चूरू उनका गांव है, तो मनिहाल में जाता था। मैंने देखा, मैं अपनी माँ के साथ जाया करता तो वहाँ बेर होते थे, झाड़ लगे हुए, वो बेर ही खाते हम तो, वे जाते संतों के दर्शन करने के लिए, हम साथ बेर खाया करते, बेर खा लेंगे चलो अब चलो ऐसे करते, तो संत कहते बेर ले जाओ अब जाओ अब जाओ ऐसे करते। उसमें दो भाई भगत महाराज महाराज पर जाया करते, बड़े धनी आदमी थे, भाइयों के प्रेम भी था, दर्शनों को जाते थे। तो लोगों ने कहा कि महाराज इनके घर में स्त्रिया है, वे लड़ती है, सारी लड़ाई करती है। तो महाराज ने उनसे पूछ लिया कि भाई हमने ये सुना है तुम्हारे घर में स्त्रिया लड़ती है, कि महाराज शर्म आवे हम क्या करें, वे लड़ती तो है, सच्ची बात एकदम सच्ची बात, कैसे उनको लाओ यहाँ, हम उनको बताएंगे, दोनों को यहाँ लाओ हम बात सुनाएंगे। कहा कि भी चलो वहाँ महाराज बार जाते हैं सत्संग में, तुम भी चलो। तो आनाकानी करते रहे, हम तो विचार किए भाई रोजाना तंग करते, चलो। तो आ गए लोगों ने कहा महाराज दोनों भाइयों की स्त्रियाँ आज आई हुई है, बाबा जी क्या समझे कौन किसी स्त्री है कौन किसी पति, आज है समुदाय। तो महाराज बोले कि देखो बहन लड़ाई करना क्या अच्छी चीज है, ये तो खराब चीज है, अपने अच्छे अच्छे गुण ध्यान करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, नमस्कार करो, ऐसे प्रेम का आदमी का बर्ताव करो, लड़ाई क्यों करती हो। और तुम्हारे को मालूम है बेचारी चुपचाप बैठी हो क्या करे, देखो सेव लड़ाई करने को क्या करती है, कि लड़ाई करने का स्वभाव हो जाता है तो भगवान उसको कुतिया बनाते हैं, कुतिया कुतिया से लड़ती है, कुत्ता कुत्ते से लड़ता है। तो तुम्हारे रसोई भरना, बच्चों का पालन पोषण करना, झाड़ू लगाना, जल भरना, बर्तन साफ करना, घर के कई काम है, तो लड़ाई को समय कम मिलता है, तो भगवान वो कुतिया बना देते हैं कि लड़ने के तो रात दिन लड़ो, कोई बाल बच्चों पालन घर साफ करना कोई काम है ना, धुंधा रसोई बनाना है, रात दिन लड़ो, उनको कुतिया बनाते हैं। स्वभाव मनुष्य बदलता है और शरीर भगवान बदल देते, कुत्ते का स्वभाव बन जाता है वो बड़ कुत्ता बनाता है, अच्छा स्वभाव संत स्वभाव हो उनको सांप बिच्छू थोड़े बनाए गए, सांप बिच्छू बनाएंगे सांप बिच्छू का काम ही नहीं कर सकेगा वो, तो स्वयं मूर्ति हो उनको ऐसी नीची जोड़ी में नहीं जाना पड़ता, तो वो कुतिया बनाते रहे। पर दिन भर रात भर करो कोई काम है ना कार्य पूरा समय मिल जाएगा कुत्ते बनने। अब सुनते उनकी लड़ाई छूट गई, तो कहने गए कुत्ती बनना पड़ेगा, लड़ाई करी तो बाबा जी कहते हैं संत महात्मा है, ये किसी पक्षपात है नहीं, किसी के बैर नहीं, सबका भला चाहते हैं, तो लड़ाई मिट गई। तो बहन मामा जाओ स्वभाव अपना शुद्ध बनाओ, निर्मल स्वभाव बनाओ, ये स्वभाव साथ में चलता है, एक माँ से पैदा होने वाले बालक उनका स्वभाव अलग अलग, एक माँ है एक बाप है एक ही गुरु है, ये साथ ही पढ़ते हैं साथ ही शिक्षा पाते हैं साथ ही भोजन करते हैं साथ रहते हैं खेलते हैं, पर स्वभाव में देखा जाए कोई तो भगवान का भजन करता है कोई नहीं करता है, कोई गुस्सा करता है कोई शांत रहता है, आपस में लड़ाई कर देते हैं। तो लड़ने वाले बालक अलग होते हैं, कई सोन बालक होते हैं। कलकत्ता में एक बच्चा था गोविंद शेर जी की जाति गाई, तो वे आपस में लड़ लेते, फिर पूछे किसने लड़ाई करी, वो कहता अपने करी, तो अपने कहता भाई मेरी कमी हो गई और इसने लड़ाई करी। उसकी सच्चाई का एक एक घर में 10-15-20 परिवार रहते हैं कलकत्ता में, बड़े बड़े मकान बने उनमें, तो उनमें बड़ी प्रतिष्ठा थी कि इसको तो पूछो तो सच्ची बात कह देगा, अपना कसूर अपना कह देगा, दूसरे दूसरे कह देना, उसी शांत हो गया लड़का भी नहीं है। पर उसी बात हम सस्ते में करते हैं, क्यों करते हैं कि अच्छा भाव था, अच्छी बात थी। ऐसे बहनों माताओं में जिनका अच्छा भाव है, सेवा करने का भाव है, भगवान बैकुंठ में उनको ले जाते हैं। बैकुंठ में संत आते हैं, महात्मा आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, प्रेमी आते हैं, जीवन मुक्त आते हैं, तो उनकी सेवा के लिए ले जावे। लड़ने वाली भी थोड़ी जाएंगे वहाँ, ईर्ष्या करने वाले, लड़ाई करने वाले, दंगा करने वाली, निंदा करने वाली, ऐसा कौन ले जाएगा। और ऐसी ऐसी बात आई उनको नरकों में छोड़ने मिलेगी, कि नरकों छोड़नी कहाँ जाएगी वे, कि नरकों छोड़ने मिलेगी। जैसे एक टोकरी में कबूतरों को इकट्ठा करके ऊपर जाल बांध दे तो छोड़ थोड़ी मिली है, इसलिए नरकों में रहेंगे, नरकों में रहने की जगह नहीं मिली, बड़ी त्रास पानी पड़ेगी। तो अब यहाँ किए हैं कर्म वे, जैसे कि उनका वहाँ पाप फल भोगना पड़ेगा, या किए कर्म निशंक माने वहाँ जाप कसू नहीं आएगा, हक पूछे हिसाब हजूर माए तो लेखा दिया नहीं जाएंगे, कैसे वो सास और चोर भया नर जम के हाथ दिखाएगा जी। तो भाई होता है तो करने का फल अपने को मिलेगा। तो मनुष्य शरीर मिला है इसमें जो समय है, लोगों की तैयारी कर लेना कितना नुकसान कर रहा है। भाई नफा लेने के लिए शरीर मिला है तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, अपना जितना जीवन है उसे उपकार करो, भगवान को याद करो, सेवा करो, तो घर में सुख से रहो। जिन घरों में प्रेम है, आपस में एक एक की सहायता करते हैं, एक एक की सेवा करते हैं, उसमें प्रेम रहता है, न तो ईर्ष्या में द्वेष होता है, पैर होता है, एक एक का नुकसान करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुसलमान तो हिंदुओं का नाश, उनका माल का नाश करे, हिंदू मुसलमानों के माल का नाश करे, तो हिंदुस्तान का देश का नुकसान, देश का महान हित होता है। ऐसे दीरानी जेठानी और जेठानी दीरानी का नुकसान करे तो घर का नुकसान होता है, दोनों को मिलकर एक घर का नुकसान होता है। यार एक एक उन्नति करे, प्रेम करे तो कितना अच्छा होता है। उन घरों की बच्चियां भी अच्छी होती है, बच्चे भी अच्छे होते हैं, माता पिता के अनुसार बालक होते हैं, तो भले आदमी संबंध करते हैं, सगाई करते हैं, तो उन लड़की को पूछते हैं, जैसे मैंने देखा है, क्योंकि तेरी माँ और तेरी बड़ी माँ, तेरी ताई ये लड़ती है क्या, तो लड़ाई करती है, बच्ची कह देती है तो इस घर की लड़की हम नहीं लेंगे, आग की चिंगारी जाए घर में हमारी लड़ाई हो जाएगी। जिनका प्रेम होता है, अच्छा स्नेह होता है, उसी कन्या लेते हैं वो, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे घर में भी शांति मिले। तो कन्याओं को भी ऐसा आदर होता है जिन घरों में अच्छी लड़कियां होती है। तो बहनों को चाहिए आपस में प्रेम का बर्ताव करे। जीवन कितना दिन है बहनों, थोड़े दिन देखते आग पर मारते मर जाते हैं, अचानक मार नहीं, आज काल अचानक चपेट की हुई घड़ी के में राख की ढेरी, ये नशा है जो सही थोड़ा रह गया है। इस समय में, बचे हुए समय में बधाई करो, प्रेम का बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव करो। उदारता का बर्ताव करने का बालकों पर असर पड़ता है, बूढ़ों पर असर पड़ता है, दुनिया पर असर पड़ता है। मैंने ऐसे घर देखे है, घरों में चीज वस्तु है, किसी के लड़की की शादी है, ये चीजों की जरूरत है, घर में इतनी है नहीं, तो ये मांगने को जाते, मेरे करने की हुई घटना है। पुरुष जब रहते तो उनको नहीं मांगते, घर में स्त्रियां होती उनसे मांगते, माता जी हमारे घर में ऐसी जरूरत है, बर्तनों की जरूरत है, सीढ़ी की जरूरत है, ऐसी चीजों की जरूरत है, कहाँ ले जाओ, क्या है तो ले जाओ। तो पुरुष से मांगती, डरते थे लोग, माता जी अच्छी थी, बरती थी, अच्छी माताएं घरों में होती है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, वे रखती है। बाहर गांव की, बिल्कुल गांव में रह रहे वाले, जहाँ दुकान भी नहीं, कोई चीज पैसों से भी नहीं मिलती, ऐसी जगह रहती है, सोंठ है, काली मिर्च है, लवंग है, जावित्री है, ऐसी चीज दवाइयां है वो लगते, तो अब कर जाओ वहां से ले आओ, वो मांग कर दिया थे, अपना काम कर लेते। ऐसे मैंने देखे हैं गांव में, बिल्कुल गांव में जो चीज मिलती नहीं, जिन घरों में माता है रखती है, ले जाओ भाई ले जाओ। बिलोना करते हैं जो काया रखती है, उन घरों में बिलोना होता है, तो वो सास सब ले जाओ, तो बहुत से घरों में ले जाते हैं जिनके गाय नहीं, भैंस नहीं, कोई विचार है नहीं, इतनी सी सास दे दी, उसे रोटी खा लेते, तृप्त हो जाते हैं, ऐसे सास बांटते हैं, तो बहनों उदार होती है, ये ऐसा खाती है, ये माता है, अन्नपूर्णा माँ है, ये सबका अन्नपूर्ण करती है, इस वास्ते करने के लिए ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा अपना बर्ताव अच्छा बनाओ, जो स्वभाव अच्छा बन जाए, फिर कहीं भी जाओ स्वभाव साथ में जाएगा। जैसे एक माँ से पैदा होने वाले बालकों में भी स्वभाव अलग अलग है, तो ये पैदा के पूरी जन्म का बनाया हुआ स्वभाव है, अच्छा अभी स्वभाव बनोगे तो जन्मांतर चलेगा साथ। ये धन संपत्ति साथ नहीं चलती है, घर जमीन जायदाद साथ नहीं चलते है, किंतु स्वभाव साथ चलते है, स्वभाव यहाँ नहीं रहता है, स्वभाव साथ चलता है। इस वास्ते आप लोगों से ये विनय पूर्व प्रार्थना है कि अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, जो समय हमारे को मिला है अच्छे से अच्छे काम करो, समय सार्थक होगा और आपके साथ में चलने की बढ़िया पूंजी हो जाएगी। स्वभाव सुधारना, कहीं जाओ स्वभाव शुद्ध होता है, मैंने देखा है संत महात्मा चार जाते हैं वही लोग आदर करते हैं, उनमें क्या है स्वभाव सुधरा और क्या फर्क पड़ा है, मनुष्य ऐसे हाथ पांव नाक कान आंख ऐसे ही है, शरीर ऐसा ही है, परंतु जिनका स्वभाव अच्छा है वो संत कहलाते हैं। ऐसी बहन माता श्रेष्ठ होती है तो माँ भी आदर करती है, अगर स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है वो भाई बहन को लाता है, ज्यादा दिन हो गया तो माँ कहती है बेटा बहन को पहुंचा दे, अपने घरे जाओ, बड़ा बालक है अपने घर ही अच्छा है, ले जाओ बाहर करो, माँ को नहीं सुहाती, और भले स्वभाव वाले सबको सुहाते, अच्छे स्वभाव वालों संत महात्मा क्या है स्वभाव में शुद्ध है और क्या फर्क पड़ा, हाथ पांव नाक कान तो ऐसे ही है, पर स्वभाव शुद्ध है तो शुद्ध स्वभाव को सब चाहते हैं, यार स्वभाव को शुद्ध बनाना हाथ ही बात है, हमें इकट्ठा करना हाथ ही बात नहीं है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, क्यों प्रावधिक हाथ है, पर स्वभाव सुधारने में तो अभी अच्छी शिक्षा बने और स्वभाव शुद्ध बनाओ तो आप शुद्ध बन जाओगे। तो ये बात है, अपना जो श्वास है ये जा रहा है, ये जब तक श्वास आए हम अर्थिंग जमाती है तब तक लोगों की सेवा करो, स्वभाव को शुद्ध बनाओ, भगवान को याद करो, जिससे लोग और परलोक सब सुधर जाए। नारायण नारायण नारायण।